एकत्र ज्ञानोगोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोगोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो रोज आता है, पर शायद हम उसे पूरी तरह समझते नहीं, और वो शब्द है बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म।
नमस्ते, मैं हूं आपका दूसरा साथी इस चर्चा में। और हाँ, ये शब्द, ये बहुसंस्कृतिवाद, इस पर इतनी बहसें होती हैं, इतनी अलग अलग राय हैं, कई बार तो लगता है कि सब एक ही चीज की बात कर भी रहे हैं या नहीं।
बिल्कुल, क्या अलग अलग तरह के लोग, अलग कल्चर, अलग भाषाएं, क्या वो एक साथ शांति से रह सकते हैं, या ये विविधता, ये डाइवर्सिटी समाज को कमजोर करती है?
यही वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी बातचीत घूमेगी, और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे समाजशास्त्री अली रत्तन सी के काम के जरिए।
हाँ, क्योंकि ये सवाल आज बहुत ज्यादा मौजू हो गया है। दुनिया भर में समाज बदल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, डाइवर्सिटी बढ़ रही है,
और ठीक इसी समय हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि भाई, ये मल्टीकल्चरलिज्म का जो एक्सपेरिमेंट था वो तो फेल हो गया।
हाँ, कई बड़े नेताओं ने कहा है, तो क्या ये सच है या फिर ये कोई गढ़ी हुई कहानी है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे।
और इसमें हमारी मदद करेंगे अली रत्तन सिंह। वो कोई मतलब सिर्फ थ्योरी लिखने वाले अकादमिक नहीं है, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं, और दशकों से।
हाँ, दशकों से उन्होंने इसी पर काम किया है, नस्लवाद, जातीयता, पहचान, बहुसंस्कृतिवाद।
बिल्कुल, और उनकी खास बात यह है कि वो सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखते, उनके काम में समाजशास्त्र तो है ही, साथ में इतिहास, राजनीति, कल्चरल स्टडीज, सब कुछ जुड़ा हुआ है।
और एक बहुत जरूरी चीज, वो उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म की जो लंबी परछाई है, उसे कभी नजरअंदाज नहीं करते। वो मानते हैं कि आज को समझने के लिए उस इतिहास को जानना जरूरी है।
सही कहा, और उनका अप्रोच बड़ा बैलेंस्ड है। वो ना तो इसके अंधभक्त हैं, ना ही इसे एकदम खारिज कर देते हैं। वो इसकी जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हैं रचनात्मक तरीके से,
जो आजकल कमी देखने को मिलता है, जहां सब या तो हाँ या ना में बंटे हुए हैं।
बिल्कुल, वो हमें उन दो एक्सट्रीम से हटाकर बीच की जमीन पर लाने की कोशिश करते हैं।
तो रतन सी के विश्लेषण का कह सकते हैं निचोड़ क्या है? वो क्या कहना चाहते हैं मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में?
देखिए, सबसे पहली बात जो वो कहते हैं वो ये कि बहुसंस्कृतिवाद कोई एक फिक्स चीज नहीं है, कोई एक पॉलिसी या एक आइडियोलॉजी नहीं।
अच्छा,
तो फिर क्या है
ये? असल में विचारों का, प्रैक्टिसेस का, सरकारी नीतियों का, और यहां तक के तनावों का एक मिला जुला बदलता हुआ रूप है। मतलब ब्रिटेन का मल्टीकल्चरलिज्म कनाडा से अलग होगा, भारत से अलग होगा, टाइम के साथ भी बदला है। इसे एक डिब्बे में बंद करना मुश्किल है।
मतलब ये कोई वन साइज फिट्स ऑल जैसी बात नहीं है।
ओके, और दूसरा बड़ा तर्क क्या है उनका?
दूसरा और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल तर्क ये है कि ये जो कहानी हमें सुनाई जाती है ना कि बहुसंस्कृतिवाद फेल हो गया।
हाँ, जो यूरोप के कई नेता कहते हैं।
बिल्कुल, रत्तन सी कहते हैं कि ये कहानी काफी हद तक एक राजनीतिक जरूरत है, एक गढ़ा हुआ नैरेटिव है। ये सबूतों पर कम और डर, पूर्वाग्रह और कुछ खास समुदायों को मतलब बलि का बकरा बनाने पर ज्यादा टिकी है।
ओहो, ये तो काफी काफी स्ट्रॉन्ग बात है। तो अगर मल्टीकल्चरलिज्म फेल नहीं हुआ, तो फिर समाज में जो तनाव दिखते हैं, जो झगड़े होते हैं, वो क्यों है?
समस्या कहाँ है? रत्तन सी का मानना है कि असली जड़ें कहीं और हैं। वो हैं लगातार बने हुए नस्लवाद में, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता में, नौकरियों की कमी, अवसरों की कमी,
उपनिवेशवाद की वो मानसिकता जो अब भी शायद कहीं ना कहीं जिंदा है।
हाँ, और वो सरकारी नीतियां जिन्हें एकीकरण या इंटीग्रेशन कहा गया, पर जो शायद कभी कभी अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा देने के लिए बनी नहीं थी। तो रत्तन सी हमें सतही जवाबों से आगे देखने को कहते हैं, गहरी वजहों को समझने को कहते हैं।
चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। ये जो विफलता की कहानी है, जिससे कई बड़े नेताओं ने कहा मल्टीकल्चरलिज्म इज डेड, रतन सी इसे एक राजनीतिक चाल क्यों मानते हैं?
देखिए, आसान है ना, जब देश में आर्थिक दिक्कतें हों, नौकरियां जारी हों, लोगों को अपना भविष्य अनिश्चित लगे, तो असली मुद्दों पर बात करने के बजाय, जैसे कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम, ग्लोबलाइजेशन के असर या सरकार की अपनी नाकामी,
किसी बाहर वाले पर, किसी अल्पसंख्यक समूह पर उंगली उठा देना आसान होता है।
बिल्कुल, राजनीतिक रूप से फायदेमंद भी होता है कई बार। रतन सी कहते हैं कि सबूत ये दिखाते हैं कि समस्याएं कल्चरल डिफरेंस की वजह से उतनी हैं जितनी सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से हैं।
ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, रतन सी ये भी समझाते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद शब्द के कई मतलब हो सकते हैं ना, और इससे अक्सर कन्फ्यूजन होता है, वो क्या है?
हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहस में अक्सर लोग अलग अलग मतलब लेकर बात कर रहे होते हैं। पहला मतलब तो बिल्कुल सीधा है, डेमोग्राफिक रियलिटी, मतलब समाज में कई कल्चर के लोग रहते हैं। जैसे भारत तो हमेशा से मल्टीकल्चरल रहा है।
हाँ, ये तो है।
दूसरा मतलब है एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा, जो ये मानती है कि ये विविधता, ये डाइवर्सिटी अच्छी चीज़ है, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए।
और तीसरा?
तीसरा है स्पेसिफिक सरकारी पॉलिसीज, नीतियाँ, जो इस डाइवर्सिटी को मैनेज करने या सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, जैसे स्कूलों में अलग भाषाएं पढ़ाना या कल्चरल प्रोग्राम्स को ग्रांट देना वगैरह। बहस में अक्सर लोग इन तीनों को मिला देते हैं।
और ये पॉलिसीज आई क्यों थी? क्या ये बस सरकारों ने ऊपर से लागू कर दी?
नहीं रतन सी, हमें इतिहास याद दिलाते हैं। ये पॉलिसी ज्यादातर पश्चिमी देशों में आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब उनकी पुरानी कॉलोनी से बहुत सारे लोग वहां जाकर बसे। शुरू में तो उनसे उम्मीद की गई कि वो अपनी पुरानी पहचान छोड़कर, मतलब पूरी तरह घुल मिल जाएंगे, एसिमिलेशन।
पर ऐसा हुआ नहीं है ना? उनसे उम्मीद तो की गई, पर समाज ने उन्हें पूरी तरह अपनाया भी नहीं, भेदभाव बना रहा।
बिल्कुल वही बात हुई कि न इधर के रहे न उधर के, और इसी नाइंसाफी के खिलाफ 1960s-70s में आवाजें उठीं, एंटी रेसिस्ट मूवमेंट्स हुए। लोगों ने कहा, हमें सिर्फ बर्दाश्त मत करो, हमें बराबरी का हक दो, हमारी पहचान का सम्मान करो।
तो ये नीतियां कुछ हद तक उस दबाव का नतीजा भी थीं, नीचे से उठी मांग।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ ऊपर से थोपा गया फैसला नहीं था, ये न्याय के लिए एक संघर्ष का हिस्सा भी था।
ये इतिहास समझना वाकई जरूरी है कॉन्टेक्स्ट के लिए। अच्छा, अब उन मिथकों पर आते हैं जिन्हें रतन सी चैलेंज करते हैं। सबसे आम आरोप, मल्टीकल्चरलिज्म लोगों को अलग थलग करता है, समाज में घेटो बनाता है।
हाँ, ये बहुत कॉमन है, पर रतन सी कहते हैं कि डेटा ये कहानी नहीं कहता। रिसर्च दिखाती है कि ज्यादातर अल्पसंख्यक मिलजुल कर रहना चाहते हैं, जो हमें सेग्रीगेशन दिखता है, मतलब अलग अलग बस्तियां।
हाँ, उसके पीछे क्या कारण है फिर?
उसके पीछे कल्चरल पसंद से ज्यादा आर्थिक मजबूरी है भाई। सस्ते घर कहाँ मिलेंगे, हाउसिंग मार्केट में भेदभाव है। और एक और फैक्टर है व्हाइट फ्लाइट, मतलब बहुसंख्यक आबादी का उन इलाकों से हट जाना। तो इसका दोष मल्टीकल्चरलिज्म पर डालना ठीक नहीं।
दूसरा बड़ा डर जो आजकल बहुत फैलाया जाता है कि मल्टीकल्चरलिज्म आतंकवाद को बढ़ावा देता है।
ये बात खासकर 9/11 या लंदन बॉम्बिंग्स के बाद बहुत जोर शोर से कही गई।
हाँ,
पर रतन सी इसे पूरी तरह खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी एम्पिरिकल स्टडी में, मतलब तथ्यात्मक शोध में, मल्टीकल्चरल पॉलिसीज और टेररिज्म के बीच कोई सीधा लिंक नहीं मिला है।
तो फिर कट्टरता क्यों बढ़ती है?
उसके कारण बहुत जटिल हैं, जैसे कहीं अन्याय का अनुभव, विदेश नीति से नाराजगी, समाज से कटा हुआ महसूस करना, पहचान का संकट, गरीबी, ये सब वजहें हो सकती हैं। बल्कि रतन सी का तर्क है कि रेसिज्म और इस्लामोफोबिया का जो माहौल है, वो इन समस्याओं को और बढ़ाता है, कम नहीं करता।
और तीसरा आरोप जो कभी कभी फेमिनिस्ट नजरिए से भी आता है कि मल्टीकल्चरलिज्म पिछड़ी हुई या दमनकारी प्रथाओं को, खासकर महिलाओं के खिलाफ, कल्चर के सम्मान के नाम पर अनदेखा कर देता है, जैसे जबरन शादी वगैरह।
रतन सी इसे भी एक भद्दा मजाक कहते हैं, बल्कि वो साफ करते हैं कि लगभग सभी सरकारी मल्टीकल्चरल पॉलिसीज एक लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करती हैं, मतलब कानून का राज, मानवाधिकार, जिसमें महिलाओं के अधिकार शामिल हैं, वो सबसे ऊपर हैं।
तो कोई भी पॉलिसी जबरन शादी या हिंसा को सपोर्ट नहीं करती?
बिल्कुल नहीं, और अक्सर होता यह है कि इन गलत प्रथाओं के खिलाफ सबसे मजबूत आवाजें उन्हीं समुदायों के अंदर से उठती हैं, खासकर वहां की औरतों और सुधारकों से। मल्टीकल्चरलिज्म इन आवाजों को दबाता नहीं, बल्कि कई बार उन्हें मंच दे सकता है।
आपने शुरू में उपनिवेशवाद की छाया का जिक्र किया था, रतन सिंह उसे आज के दौर से कैसे जोड़ते हैं?
वो कहते हैं कि कॉलोनियल टाइम में जो एक सोच बन गई थी ना, नस्लीय और सांस्कृतिक ऊंच नीच की, के गोरे यूरोपियन बेहतर हैं और बाकी दुनिया पिछड़ी हुई।
हाँ,
वो सोच आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, अनजाने में ही सही। आज यूरोप और शायद दूसरे पश्चिमी देश भी अपने नॉन व्हाइट माइनॉरिटीज को कई बार उसी पुराने चश्मे से देखते हैं। उन्हें हमेशा एक समस्या या बोझ की तरह देखा जाता है। ये जो ऐतिहासिक बोझ है, यह आज भी रिश्तों में तनाव पैदा करता है।
और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है इस्लामोफोबिया का, जो लगता है आजकल मल्टीकल्चरलिज्म की पूरी बहस के सेंटर में आ गया है।
हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है रतन सिंह के विश्लेषण का। वो तर्क देते हैं कि हाल के दशकों में, खासकर 9/11 के बाद, मल्टीकल्चरलिज्म पर जो हमला हो रहा है वो काफी हद तक इस्लाम और मुसलमानों पर हमले का रूप ले चुका है।
मतलब मुस्लिम पहचान जैसी सारी चिंताओं का सिंबल बन गई है।
बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल घटना है, मीडिया का कवरेज और वो पुरानी ओरिएंटलिस्ट सोच जिसमें पूरब को हमेशा पश्चिम से कमतर, अजीब और खतरनाक दिखाया गया, इन सब ने मिलकर मुसलमानों को एक खतरे की तरह पेश किया है।
और फिर हिजाब, नमाज, मस्जिद, ये सब मुद्दे बन जाते हैं।
हाँ, ये सब जैसे सिंबॉलिक लड़ाई के मैदान बन गए हैं, जहां नेशनल आइडेंटिटी को इस्लाम के विरोध में डिफाइन करने की कोशिश हो रही है। रतन सिंह का मानना है कि मुसलमानों के इंटीग्रेट ना होने का जो शोर है, वो असल में उनके रवैये से ज्यादा उनके खिलाफ बढ़ते इस्लामोफोबिक माहौल के बारे में है।
तो इस पूरे विश्लेषण से अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी?
पहले तो ये कि भाई, मल्टीकल्चरलिज्म बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, इसे हाँ या ना में नहीं देखा जा सकता। दूसरी, इसकी विफलता की कहानी जो है वो काफी हद तक एक पॉलिटिकल मिथ है, जो असली मुद्दों जैसे रेसिज्म और आर्थिक असमानता को छुपाती है।
तीसरी बात, कल्चरल आइडेंटिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये बदलती रहती है और लोग एक साथ कई आइडेंटिटीज जीते हैं। चौथी, इतिहास, खासकर कॉलोनियलिज्म का इतिहास, आज के तनावों को समझने के लिए बहुत जरूरी है।
पांचवी, समाज में जो बंटवारा दिखता है उसके पीछे अक्सर कल्चर से ज्यादा स्ट्रक्चरल कारण होते हैं, इकोनॉमी, भेदभाव, मौके न मिलना। और छठी, आज के दौर में इस्लामोफोबिया मल्टीकल्चरलिज्म विरोधी लहर के बिल्कुल सेंटर में है।
तो कुल मिलाकर हमें सतही बहसों से आगे बढ़कर न्याय, बराबरी और ऐतिहासिक ईमानदारी पर आधारित एक ज्यादा ज्यादा बारीक समझ बनाने की जरूरत है।
रतन सिंह के कुछ विचार सच में ऐसे हैं जो दिमाग में रह जाते हैं, जैसे उनका ये कहना कि पहचान की मांग सिर्फ कल्चर बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सत्ता, प्रतिनिधित्व और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पूरी भागीदारी के बारे में है।
हाँ, ये इसे एक पॉलिटिकल डायमेंशन देता है, सिर्फ कल्चरल फेस्टिवल से कहीं आगे।
और ये भी कि पहचान न तो पत्थर की लकीर है, न ही पूरी तरह हमारी मर्जी से चुनी हुई। ये हमारी कोशिशों और समाज की जो बाधाएं हैं उनके बीच लगातार बनती बिगड़ती रहती है। ये आइडेंटिटी की फ्लूइडिटी को दिखाता है।
विफलता के नैरेटिव पर उनका कहना भी बहुत पावरफुल है कि ये कहानी घटिया रिसर्च, राजनीतिक अवसरवाद और मीडिया के फैलाए डर का एक जहरीला कॉकटेल है जो असली वजहों को नजरअंदाज करता है।
हाँ, और भविष्य के लिए उनका सुझाव भी बहुत प्रैक्टिकल है कि हमें कल्चरल डिफरेंस की सच्चाई को भी मानना होगा और जो हमारे साझा नागरिक मूल्य हैं उनके महत्व को भी।
किसी एक को दूसरे में मिलाना नहीं है।
बिल्कुल, दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना होगा और इसके लिए लगातार बातचीत, संवाद और एडजस्टमेंट की जरूरत है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इन विचारों का क्या करें?
सबसे पहले तो मुझे लगता है यह हमें ज्यादा ज्यादा क्रिटिकल बनाता है। जब हम मीडिया में या नेताओं से मल्टीकल्चरलिज्म की बुराई सुने तो हम रुककर सोच सकते हैं कि क्या ये पूरी कहानी है, क्या कोई एजेंडा छुपा है, क्या असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है।
हाँ, एक तरह की मीडिया लिटरेसी।
और अपनी बातचीत में भी।
बिल्कुल,
अपनी बातचीत में भी हम जो आम धारणाएं हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोई कहे अरे वो फला कम्युनिटी के लोग तो मिलते जुलते ही नहीं, तो हम पूछ सकते हैं कि भाई क्या इसके पीछे कोई आर्थिक कारण या सामाजिक भेदभाव भी हो सकता है।
ये हमें दूसरों के बारे में झट से राय बनाने से रोकता है।
हाँ, शिक्षा में भी ये बहुत अहम है। टीचर्स को ये समझने में मदद मिलती है कि हर बच्चा अपनी पूरी कल्चर का अकेला रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और सिलेबस में डाइवर्सिटी दिखाते वक्त उसे सतही या स्टीरियोटिपिकल बनाने से बचना चाहिए। इतिहास को सही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना जरूरी है।
और वर्कप्लेस पर, दफ्तरों में,
वहां भी। ये सिर्फ अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को हायर कर लेना नहीं है, उससे आगे बढ़कर एक इंक्लूसिव कल्चर बनाना है, जहां सिस्टम में जो बायस हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, उन्हें पहचाना जाए और दूर किया जाए, जहां सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले।
और जो लोग नीतियां बनाते हैं उनके लिए क्या सबक है?
उनके लिए सबसे बड़ा सबक है कि पॉलिसीज सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, न कि डर या पूर्वाग्रह पर। सोशल जस्टिस पर फोकस करना, रोजगार, घर, शिक्षा, भेदभाव से मुक्ति, ये शायद सतही कल्चरल यूनिटी बनाने की कोशिशों से ज्यादा जरूरी और ज्यादा असरदार हो सकता है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि मल्टीकल्चरलिज्म पर जो पब्लिक डिबेट होती है वो अक्सर बहुत बहुत शैलो होती है और भ्रामक भी।
हाँ, और इसकी विफलता का जो दावा है वो अक्सर एक राजनीतिक हथियार होता है, जमीनी हकीकत कम।
मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये समझना है कि इतिहास और स्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे रेसिज्म और आर्थिक असमानता कितने ज्यादा मायने रखते हैं। अक्सर जिन्हें हम कल्चरल क्लैश समझ लेते हैं उनकी जड़ें कहीं और होती हैं।
बिल्कुल सहमत। और रतांसी हमें पूरी तरह निराश भी नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि डाइवर्सिटी आसान है या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो कहते हैं कि एक कामयाब और न्यायपूर्ण समाज वो नहीं है जहां कोई मतभेद ना हो,
बल्कि वो है जो इन मुश्किलों का सामना करने की लगातार कोशिश करता है।
हाँ, जो लगातार कोशिश करता है कि रेसिज्म खत्म हो, असमानता कम हो और सबके लिए समान अवसर बने। ये रास्ता लंबा और मुश्किल है, इसमें दो राय नहीं, पर शायद यही सही रास्ता है।
और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, अगर बहु सांस्कृतिक नीतियां उतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितनी बताई गई, और अगर हम मुश्किल सवालों से बचने के लिए ही विफलता का शोर मचा रहे हैं, तो फिर हम असल में किस तरह का समाज बना रहे हैं? जब हम साथ रहने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं तब क्या बचता है? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।